नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने उभरते भारत और विविधता में एकता की भावना को दर्शाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर शक्ति असंतुलन को रोकने के लिए निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आह्वान किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर में हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत होती है, नागरिकों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने तक फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर अपनी 17 घंटों की यात्रा शुरू की। और कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें आज इंग्लैंड के वल्वरहैम्पटन में अपने ग्रुप मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता भारत की विशेषता है, जिसे हाल ही में संपन्न महाकुंभ के दौरान अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने आज महाकुंभ पर लोकसभा में बयान दिया। श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है, तो इस एकता का भव्य प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने विविधता में एकता की इस विशेषता को समृद्ध करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई नदियां हैं, जिनमें से कुछ लुप्तप्राय हैं। उन्होंने महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए नदी उत्सव का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि ये नई पीढ़ी को जल संरक्षण का महत्व सिखाएगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की सफलता में योगदान देने वाले लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है, क्योंकि इसका नेतृत्व लोगों ने ही किया था।
मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मजबूत वैश्विक व्यवस्था की अनुपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों की चुनौतियों देने में सक्षम बनाती है। डॉ जयशंकर आज सुबह नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के सत्र थ्रोन्स एंड थॉर्न्स डिफीटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पर बोल रहे थे। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के साथ भारत के अनुभव का हवाला देते हुए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ जयशंकर ने म्यांमार और पश्चिमी देशों में सैन्य तख्तापलट पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अंतर को इंगित करते हुए वैश्विक मानकों पर निष्पक्षता और स्थिरता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने पिछले 8 दशकों में वैश्विक व्यवस्था की गहन समीक्षा का आह्वान किया और दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन को मान्यता देने का आग्रह किया। रायसीना डायलॉग में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा के दौरान हुई रचनात्मक चर्चाओं पर प्रकाश डाला। सुश्री गबार्ड ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों उनके भारतीय समकक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत के रहे तथा पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप और श्री मोदी के संयुक्त वक्तव्य ने उत्पन्न गति को आगे बढ़ाया है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूट गया है, जिससे गाजा पट्टी में हिंसा की विनाशकारी लहर शुरू हो गई है। इसराइली सेना ने मंगलवार की सुबह व्यापक हवाई हमले किए, जिसमें फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कम से कम 200 लोग मारे गए, जिनमें से कई पीड़ित कथित तौर पर बच्चे थे। गत 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से यह सबसे बड़ा सैन्य हमला है, जिसने लगभग 2 महीने की सापेक्ष शांति को समाप्त कर दिया है। अंतरिक्ष यात्री बूच विलमोर और सुनीता विलियम्स को वापस लाने वाला ड्रैगन अंतरिक्ष यान कल सुबह सुबह धरती पर वापस लौटेगा। अंतरिक्ष यान ने उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए यात्रा शुरू कर दी है, जो 9 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे। ये दोनों आज सुबह 10:35 IST पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो गए और अब 17 घंटों की भीतर ही घर वापसी की यात्रा शुरू हो गई है। नासा ने कहा है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान कल सुबह 3:27 पर धरती पर उतरेगा। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को भी ले जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य के नागरिकों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। नागपुर की घटना के बारे में राज्य विधानसभा को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि नागपुर में हुई हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत होती है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए श्री फडणवीस ने दोहराया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागपुर में स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार नागपुर हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। संसद के बाहर पत्रकारों को बातचीत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार मणिपुर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि हर कोई चाहता है कि मणिपुर भी अन्य राज्यों की तरह समृद्ध और विकसित हो। वे आज राज्यसभा में मणिपुर बजट से संबंधित विधेयकों पर चर्चा का जवाब दे रही थी। मंत्री ने कहा है कि मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और कई दशकों से यह संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा है कि हर सरकार ने इस संकट को संवेदनशीलता से संभाला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन पर 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। भारतीय मौसम विभाग ने आज ओडिशा के उत्तरी आंतरिक भागों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। पश्चिम में तटीय गुजरात, कोंकण, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के स्थानों पर भी अलग अलग जगह पर अगले 2-3 दिनों के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम रह सकता है। इधर पूर्वोत्तर में मौसम विभाग ने आज तेज हवाओं और बिजली के साथ गरजने की और बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, शियोमी, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पंजाब में नशा विरोधी अभियान के दौरान पिछले 17 दिनों में पुलिस ने 1651 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 2575 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया है कि इन लोगों के पास से 95 किलोग्राम हेरोइन, कोकेन और अन्य ड्रग के अलावा 7 लाख से अधिक नशीली गोलियां और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। 64 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा है कि नशे की लत से शिकार लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं की जानी चाहिए और उन्हें इलाज के लिए नशा मुक्त केंद्रों में भी भर्ती कराया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के धनशोधन मामले में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद कल पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों ने बताया है कि श्री प्रसाद को मामले में चल रही जांच के संबंध में केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी अब मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पटना ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली के ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें प्रदर्शन के लिए सराहित किया और कबड्डी विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें आज शाम इंग्लैंड में वॉल्वरहैम्पटन में मैदान में उतरेंगी। महिला टीम ग्रुप डी से वेल्स के साथ शाम 5:33 पर भारतीय समयानुसार भिड़ेगी, जबकि पुरुष टीम ग्रुप बी में स्कॉटलैंड के साथ रात 10:30 पर भारतीय समयानुसार भिड़ेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।